उस दिन राधाचरण प्रभु के साथ मेरा बात हो रहा था रात को। राधाचरण प्रभु ने बोलने लगा, महाराज आप इतना ट्रैवल मत कीजिए। तो मैं बोला, देखिए आप लोग बोलते हैं ट्रैवल मत कीजिए, बल्कि हमारे ये जरूर आना। वो बोलने के बाद हमको कुछ खराब लगा। मैं सोचने लगा, सूरत एक विशेष जगह है, जहां हम ट्रैवल करें या ना करें हम तो जरूर आना पड़ेगा यहाँ। लगभग 15 साल पहले ही 2004 में, 14 साल पहले बम्बई में राधाचरण प्रभु के साथ मेरे पहली बार मुलाकात हुआ था गिरिराज महाराज के व्यास पूजा उत्सव मनाए जा रहे थे, उन्होंने मना रहे थे और मैं गया, कुछ बोला और राधाचरण प्रभु ने बार बार बोलने लगा हरे कृष्ण। राधाचरण प्रभु ने बार बार बोलने लगा कि सूरत आने के लिए। तो उस समय मैं सोचा नहीं कि मैं बोला जरूर आऊंगा, बल्कि उस समय बिल्कुल पता नहीं था कि सूरत के साथ ऐसा एक संपर्क बनेगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कंप्लाइड टू राधाचरण प्रभु'स रिक्वेस्ट। आई केम टू सूरत एंड आई डेवलप माई रिलेशनशिप विथ सो मैनी ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू राधाचरण प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्य पदं भोजो राधा मदन मोहनम्। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधा श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन् रास रसारम्भि वंशी वट तटस्थित कर्षन वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु न तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदी गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल शाम को मैं जब जो प्रोग्राम किया था उसमें कौन कौन थे? अच्छा, आप सब थे वहां। तो कल मैं कृष्ण लीला के बारे में बोला, कृष्ण की लीला, भगवान जो कार्य करते हैं उसको लीला कहा जाता है। हमारे जो कार्य हैं वो कर्म के फेर से होते हैं, कर्म के कारण, कर्म के प्रतिक्रिया के रूप से होता है। लेकिन भगवान को वैसे बद्धता मूलक कार्य नहीं होता है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तो इसलिए भगवान का जो कार्य है उसको लीला कहा जाता है। और मैं ये भी बताया था, लीला का मूल उद्देश्य होता है अपने भगवान, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। इति दृक्षा लीला भीर आनंद कुंडे सघोषम निमज्जंतम अखप्पयंतम। सघोषम मतलब अपने भक्तों को भगवान निमज्जंतम डुबा देते हैं एक आनंद के सागर में। आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद के सागर में डुबा देते हैं। तो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान लीला विलास करते हैं। और भगवान की लीला के माध्यम कुछ शिक्षा भी हमें मिलता है। और मूल शिक्षा क्या होता है भगवान के लीला का? मूल शिक्षा ये होता है कि भगवान को, भगवान के शरण लेना। जैसे गीता का अंतिम उपदेश भगवान दे रहे हैं, माम एकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण ले लो, मेरे पास अपने आप को समर्पण कर दो। ये ही शिक्षा भगवान अपने लीला के द्वारा देते हैं। तो कल मैं कृष्ण के लीला के बारे में बोला था, तो आज क्या मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला बताएंगे? बताएंगे नहीं, सुनाएंगे चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भगवान भक्तों के रूप में आए हैं हमें कुछ शिक्षा देने के लिए। भगवान को पता था कि कलयुग में इतने भगवान पैदा होगा, तो इसलिए मैं कलयुग में नहीं आऊंगा, भगवान के रूप में नहीं आऊंगा, मैं भक्तों के रूप में आकर सबको समझाऊंगा असल भगवान कौन है। असल भगवान है कृष्ण, और बाकी जो भगवान है सब नकली भगवान है। ये शिक्षा देने के लिए भगवान कलयुग में भक्तों के रूप में आए हैं। और भक्तों के रूप में आकर भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्ण ही भगवान है। आप सबको पता है भगवान कौन है? जिसको पता है हाथ उठाइए। ओ अच्छा, सबको पता है, थैंक यू। जिसको बहुत सही रूप से पता है कृष्ण भगवान है तो दो हाथ उठाइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्त। केवल कृष्ण ही भगवान है और सब है उनके नौकर। कृष्ण ही भगवान और बाकी सब और सब उनका नौकर है। आर सब भृत्त, ये है सही शिक्षा। और ये शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी शचीसुत हईल सेई, बलराम हईल निताई। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सची नंदन, सची माता के पुत्र के रूप में अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और बलराम बने हैं नित्यानंद प्रभु। यहां आप देख रहे हैं दो विग्रह हैं, है ना, सची सूत चैतन्य और नित्यानंद, चैतन्य निताय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे इस रूप में आकर उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रचार किया। अनर्पित चरिम चिरात करुणायावतीर्ण कलो, जो वस्तु कभी पहले दिया नहीं गया था, अनर्पित जो अर्पण नहीं किया गया था, चिरात चिरकाल, उसको अर्पण करने के लिए समर्पयितुम, उसको अर्पण करने के लिए करुणाया कृपा पूर्वक अवतीर्ण कलो, कलियुग में भगवान आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। और वो कौन सी वस्तु है जो पहले अर्पण नहीं किया गया था? उन्नत उज्जवल रसान स्वभक्ति श्रिया, उन्नत उज्जवल रस। रस का मतलब है संपर्क का माध्यम, जो संपर्क बनता है, प्यार का संपर्क जो बनता है, उसका जो माध्यम होता है उसको रस कहा जाता है। ये रस होता है दास्य, मतलब प्रभु के साथ नौकर का जो संपर्क, प्रभु और नौकर के बीच, मालिक और नौकर के बीच एक संपर्क होता है, वो भी प्यार का संपर्क है। सखाओं के बीच जो संपर्क, उसका भी माध्यम प्यार है, उसे सख्य रस कहा जाता है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, पिता माता के साथ अपना
अपना संतान का जो संपर्क, उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। और प्रेमिक और प्रेमिका के बीच जो संपर्क, उसे मधुर रस कहा जाता है। तो ये जो रस है, इन रसों में से सर्वोत्तम, उन्नत, सबसे ऊंची जो रस है, कौन से रस सबसे श्रेष्ठ है इन रसों में से? मधुर, उन्नत। ये मधुर रस में, और उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? मधुर रस में जो उज्ज्वल, बहुत ही चमकीली, बहुत ही शाइनिंग, वाइट, वेरी ब्राइट, वो कौन सी रस है? मधुर रस में भी जो प्रेमिक और प्रेमिका के बीच जो संपर्क होता है, वो सबसे उज्ज्वल है। मतलब सरल रूप से पति पत्नी के बीच जो संपर्क है, वो है मधुर। लेकिन विवाह अतिरिक्त, विवाह ना पति पत्नी नहीं, विवाह का संपर्क नहीं बना है, वो केवल प्रेमिक और प्रेमिका के बीच जो संपर्क, वो और भी ब्राइट और मधुर में से उज्ज्वल रस है। तो ऐसे वृंदावन का, कृष्ण का जो भक्तों के साथ जो लीला है, ब्रज गोपियों के साथ, ये है ऐसी उन्नत उज्ज्वल रस। द्वारका में महिषीगण के साथ, रानियों के साथ कृष्ण का संपर्क है, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि। लेकिन वृंदावन में गोपियों के साथ कृष्ण का शादी नहीं हुआ था। तो ये जो शादी के अतिरिक्त जो संपर्क भगवान को भक्तों के साथ था, वो है सबसे उन्नत उज्ज्वल रस। इस रस में जो भक्ति है, जो है सर्वश्रेष्ठ भक्ति, उस भक्ति प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपित। हरि श्री कृष्ण जिसका अंग कांति है श्याम सुंदर, लेकिन वो श्याम रूप ना लेकर पुरट सुंदर दूती, स्वर्ण विद गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, मोल्डन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन लेकर आए, पुरट सुंदर दूती कदम बसंती। ये है श्री चैतन्य शास्त्र में श्री चैतन्य महाप्रभु के वर्णन, और सारे बहुत सारे वर्णन है, तो उसका विचार हम अब नहीं करेंगे। महाप्रभु की लीला के बारे में हम ये करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 साल पहले आए थे गौड़मंडल भूमि में, जो आज बंगला है, बंगाल, बंगाल, गौड़ का असल में उसका नाम है गौड़मंडल भूमि। ब्रज भूमि है श्री कृष्ण का लीला स्थली, और गौड़मंडल भूमि या बंगाल है श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला भूमि। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में अवतीर्ण हुए थे। उनका पिता जगन्नाथ मिश्र बहुत ही वरिष्ठ ब्राह्मण थे, और माता सच्ची माता सच्ची देवी। श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बहुत ही नटखट थे, जैसे कृष्ण भी नटखट था, तो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत ही नटखट थे। और अपने बच्चों के साथ खेलते थे, जब स्कूल जाते थे पाठशाला में गुरु के आश्रम में, तो स्कूल से चले जाते थे गंगा के तट पर, और गंगा में लोग नहाते थे, तो गंगा में घाट होता है होता था, एक महिलाओं को घाट था और एक था पुरुषों को। तो जहां महिला के घाट था वहां स्त्री लोग जाते थे नहाने के बाद, कपड़ा बदलने के लिए कपड़ा छोड़ के जाते थे, पुरुषों को भी वैसे अपना घाट के आगे सामने कपड़ा छोड़ के जाते थे। तो बालक निमाई अपने साथियों के साथ जाकर वो पुरुषों का कपड़ा महिलाओं को घाट में ले जाता था और महिलाओं को कपड़ा पुरुष के घाट पर ले जाता था। और जब घाट से स्नान के बाद जब आते थे तो देखता रहे कोई महिलाओं देखते थे अपना कपड़ा जो नहीं है, पुरुष के कपड़ा है धोती कुर्ता, और पुरुष देखता था साड़ी। तो बहुत शर्मिला हो जाते थे। ब्राह्मणगण गंगा में खड़े होकर गायत्री जपते थे। निमाई, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई, निमाई ने जाकर बोलता था आप किसका ध्यान कर रहे हैं, देखिए आप जिसका ध्यान कर रहे हैं वो आपके सामने खड़े हुए हैं। तो लोग बहुत नाराज हो जाते थे, निमाई तो क्या कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोलते मैं जो कहता हूं वो सत्यम और परम सत्यम है, मेरा मुंह से जो निकलता है वो सच ही है और सच को छोड़कर और कुछ नहीं है। और कभी कभी निमाई नीचे पानी के अंदर जाकर, पानी के नीचे जाकर पैर को पकड़कर उनको खींच लेते थे और वो चिल्लाने लगता अरे अरे कोई मगर आकर मेरे हमको ले जा रहा है, बचाओ बचाओ। और लोग भी बहुत व्यस्त हो जाता था। कुमारीगण लड़कियांगण शिव के पूजा करता था, दुर्गा का पूजा करता था। शिव पूजा, कुमारी लड़कीगण शिव पूजा करते हैं ताकि बहुत अच्छा पति मिले। शिव पूजा और दुर्गा की पूजा के कारण यह होता है। तो निमाई जाकर उसको बोलता था ये पूजा के जो सामग्री हैं, उपाचार है, ये हमको दे दो, क्योंकि शंकर शिवजी मेरा नौकर है और पार्वती मेरा नौकरानी है,
लड़की लोग बहुत बहुत यूज टू बिकम वेरी वेरी एम्बैरस्ड एंड अपसेट. निमाय तो क्या कह रहे हैं. बोला ठीक है, मुझे पता है तुम शिव जी का पूजा क्यों कर रहे हो, तो अगर तुम हमको ये पूजा नहीं देंगे तो जो नहीं देंगे नो ठीक ये पहले बोलता था कि जो हमको पूजा देंगे उसको बहुत सुंदर कार्तिक जैसा सुंदर पति मिलेगा, उसको इंद्र जैसा दौलत होगा और शिवजी जैसा महान होगा, ये सारे बोलता था. और जो तो कोई लड़की वो पूजा के सामग्री लेकर उठाकर भागने का तैयार करती थी और बोलता जो हमको पूजा नहीं देंगे उसको एक बुढ़ा का साथ शादी होगा जिसके घर में और 3 पत्नी रहेगा. तो डर की मारे वो सुबह के निमाय को अपनी पूजा का सामग्री डाल देता था. ऐसे बचपन में निमाय बहुत ही दुरंत था, बहुत नटखट था. तो जाकर लड़कीगण सची माता के पास कंप्लेन करता था, अभिजोग करती थी, निमाय ऐसा ऐसा कर रहा है. और जो पुरुष लोग जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर अभिजोग करते थे कि निमाय ऐसा कर रहा है, तो जगन्नाथ मिश्र बहुत ही नाराज हो जाते थे और एक हाथ में छड़ी लेकर गंगा की ओर जाते थे कि निमाय को शासन करने के लिए. जो लड़की लोग सची माता के पास कंप्लेन करने गया, वो लड़की लोग आकर निमाय को बोलता निमाय तेरा बाप आ रहा है, भाग यहां से. तो तेरा पिताजी बाप नहीं, तेरा पिताजी आ रहा है. और तो निमाय चला जाता था और जगन्नाथ मिश्र जाते हुए देखा निमाय आ रहा है. ऐसा लगता नहीं कि वो घाट में गंगा पर जाकर पानी में ऐसा खेल कूद किया, ऐसा किया, लगता है कि एकदम पाठशाला से वापस आ रहा है. तो जगन्नाथ मिश्र उसको डांटने लगा, निमाय तो क्या कर रहा था, ऐसे सब लोग तुझके तेरे बारे में अभियोग दे रहे. निमाय बोलता क्या हुआ. जगन्नाथ मिश्र ने बताने लगा क्या हुआ, मैं तो स्कूल से आ रहा हूं, मुझे पता नहीं है क्यों लोग ऐसे हमारे बारे में गलत अभिजोग दे कंप्लेन कर रहे हैं. तो जगन्नाथ मिश्र भी ये हो जाते थे, दुविधा में पड़ जाते थे, अरे ये तो लगता है बच्चा स्कूल से ही आ रहा है. निमाय बचपन में बहुत ही ऐसे वेरी नॉटी बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. वंस यू हियर समथिंग यू रिमेम्बर इट एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ही कंप्लीटेड ऑल हिज स्टडीज. 12 साल के अंदर सारे अध्ययन खत्म कर चुका था और 12 साल की उम्र में ही एक अपना स्कूल खोल दिया, लोग को सिखाने लगा. और उस समय नवद्वीप में निमाय जैसे पंडित और कोई नहीं था, उसलिए उसका नाम बन गया था निमाय पंडित. श्रेष्ठ पंडित था निमाय. उस समय एक महान पंडित कश्मीर से जिसका नाम था केशव भट्ट,
और साधारण लोग उसको कहता था केशव कश्मीरी। कश्मीर से लेकर उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत के सारे पंडितों को पराजित करके पूरब भारत में गया, वहां भी सारे पंडितों को पराजित किया, केवल एक जगह बाकी रह गया जो था नवद्वीप। और नवद्वीप उस समय विद्या के स्थान था, विद्या अर्जन के स्थान था। तो नवद्वीप में केशव कश्मीरी आया, भारत के सारे पंडितों को परास्त कर दिया, केवल नवद्वीप के पंडितगण बाकी रह गया। उनको अगर परास्त किया तो वो सारे भारत के श्रेष्ठ पंडित के रूप में उसका प्रसिद्धि होगा। केशव कश्मीरी आ रहा है सुनकर पंडितगण या तो वहां से नवद्वीप से और कहीं चले गए, नहीं तो घर से निकल नहीं रहे थे। अगर ये होगा विद्या का संघर्ष होगा और पराजय होंगे, पराजित होंगे तो शर्म की बात होगा, तो इसलिए कोई नहीं आ रहा, निकल रहा था उनके साथ मुकाबला करने के लिए। केशव कश्मीरी ने प्रतीक्षा कर रहा था कि वहां के पंडितगण कब वापस आएंगे तो उनके साथ मुकाबला करके अपना विद्यमत्ता का प्रतिष्ठा करेंगे। तो एक दिन केशव कश्मीरी ने गंगा के तट पर चल रहे थे तो देखा एक बालक गंगा के तट पर कुछ और कोई बालकों को कुछ अध्ययन कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। केशव कश्मीरी ने जाके पूछा, तुम कौन हो? बोला, मेरा नाम है निमाई, मैं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हूं। तो केशव कश्मीरी ने बोला, ओह तुम निमाई पंडित हो? महाप्रभु ने बोला, हाँ लोग हमको स्नेहवश पंडित कहते हैं, बल्कि मैं तो एक मामूली लड़का हूँ। तो तुम क्या सिखा रहे हो? मैं व्याकरण शिक्षा दे रहा हूँ, आई एम टीचिंग देम ग्रामर, व्याकरण शिक्षा दे रहा हूँ। तो बोला, ठीक है तुम आओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा ज्ञान कब तक, कितना तक हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं तो आपके सामने एक मामूली बालक हूं, आपके साथ मुकाबला करने का तो योग्यता मेरा नहीं है। तो आपके सामने जब आने का अवसर मिला है तो आपसे मैं कुछ सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो? ये गंगा जो बह रही है, गंगा को महिमा कुछ सुनाई है। तो केशव कश्मीरी तब गंगा के महिमा वर्णन करते हुए 100 श्लोक आवृत्ति किया। वो इतना ही पंडित था कि झट से ही एक के बाद एक श्लोक वर्णन करते रहे, गंगा के वर्णन करते रहे। सब विमुग्ध हो गया, मोहित हो गया। वो कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर कवित्व, कितना सुंदर भाव और कितना सुंदर गंभीरता। तो ऐसे 100 श्लोक सुनाने के पश्चात
केशव कश्मीरी ने पूछा, तो कैसा लगा?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये तो आप ही जैसे व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, बहुत सुंदर हुआ। तो बोला, मां चैतन्य महाप्रभु ने तब बोला, इतना छोटा मोटा गलती छोड़कर बहुत ही सुंदर। केशव कश्मीरी ने बोला, मेरा रचना में कभी कोई गलती नहीं होता है, और मेरा गलत समझने वाला तुम कौन हो? तुम तो साधारण व्याकरण का शिक्षा देते हो, कविता के अलंकार के बारे में तुम्हारा क्या ज्ञान है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, उस तो चुप से सुन गया चैतन्य महाप्रभु ने। तो केशव कश्मीरी ने पूछा, गलती क्या देखा बताओ। चैतन्य महाप्रभु ने उन सारे श्लोकों में से एक श्लोक का पुनरावृत्ति किया, महत्तम गंगायम सततम आभाति नितरम। ये एक श्लोक में बोला, इस श्लोक में पांच गुण हैं और पांच दोष हैं। तो पांच गुण बताने के पश्चात वो बताया कि पांच दोष ये हैं कि ये व्याकरणिक दोष दिखाया, उनमें से हमको शायद समझने में थोड़ा असुविधा होगा, लेकिन एक हम समझ सकते हैं ऐसे। गंगा के वर्णन करते हुए उन्होंने बताया था कि गंगा शिवजी के सर से, गंगा को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। गंगा का महिमा इतना है कि शिवजी भी उस गंगा को अपने सर पर धारण करते हैं, ताकि क्योंकि ये गंगा विष्णु पादोद्भूता है, विष्णु के चरण कमल से निकल रही है। ये वर्णन करते हुए शिवजी के बारे में बताया, भवानी भर्ता। तो भवानी भर्ता का मतलब है भवानी, भवानी के पति। भवानी मतलब दुर्गा का, पार्वती का पति। अच्छा, ये भवानी का मतलब और भी हुआ है, भव मतलब शिव की पत्नी होने के कारण पार्वती का नाम है भवानी। शिव की पत्नी इति भवानी, भव के पत्नी इति भवानी, और भर्ता पति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शिवजी के पति के, शिवजी के पत्नी के पति। ये वर्णन में थोड़ा गलत हो रहा है ना? तो ऐसे एक के बाद एक पांच दोष वर्णन किया, बाकी जो था ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, कि प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। लेकिन यहाँ दो जगह पांच दोषों में दो दोष था और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के आगे आ गया है। अगर प्रेडिकेट सब्जेक्ट अगर एस्टैब्लिश ना होता तो प्रेडिकेट को
ये समझना संभव नहीं होता। तो केशव कश्मीरी को सरस्वती के से वर मिला था कि सरस्वती उनके मुंह से सरस्वती बोलेंगे, तो इसलिए कोई केशव कश्मीरी को पराजित नहीं कर पाया। तो केशव कश्मीरी ने सारे भारत के सारे पंडितों को पराजित करने के पश्चात यहां आकर एक 15-16 साल के एक लड़का के पास पराजित हो गया। वो बहुत ही विमर्श हो गया, बहुत ही दुखी बन गए, घर में जाकर रोने लगा, सरस्वती के पास निवेदन करने लगा कि एक बच्चे के सामने तुम हमें ऐसे शर्मिंदा किया, हमको पराजित कर दिया एक बच्चा ने। तब सरस्वती आकर बोला, केशव तुम्हारा विद्या आज सफल हुआ, क्योंकि जिनके साथ पास तुम पराजित हुए हो वो है मेरे भी प्रभु परमेश्वर भगवान। ऐसे 14-15 साल की उम्र में ही चैतन्य महाप्रभु भारत के श्रेष्ठ पंडित बन गए थे। जो पंडित सारे भारत के सारे पंडितों को परास्त करके वहां आया और उनको पराजित करके महाप्रभु ने श्रेष्ठ पंडित के आसन प्राप्त हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग 18 साल के 20 साल की उम्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू किया। महाप्रभु ने यह संकीर्तन आंदोलन शुरू किए थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मां 24 साल की उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले लिए थे। सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और वहां जगन्नाथ को दर्शन करके, आप कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हो? अच्छा, सब वेरी गुड। जगन्नाथ को दर्शन किए आप लोग? जरूर किए होंगे। तो महाप्रभु, ये जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कौन है? श्री कृष्ण ही जगन्नाथ। जगन्नाथ को दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ को दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु अचेतन हो गए। तो उस समय वहां के राजसभा के श्रेष्ठ पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने उपस्थित थे मंदिर में, एक नौजवान सन्यासी देखने में इतना सुंदर है, 24 साल के उम्र के एक सन्यासी, उसको ऐसे अचेतन होते हुए देखकर उसको अपना घर ले गया। अपने साथ जो आदमी थे सबको ले बोला कि दे ऑल कैरिड श्री चैतन्य महाप्रभु टू द हाउस ऑफ श्री जगन्नाथ श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। और महाप्रभु के साथीगण जो थे, महाप्रभु दौड़ते हुए पहले ही आ गए और उन लोगों ने पीछे पीछे आ रहे थे, तो थोड़ा देर में जब आया और पूछने लगा ऐसा कोई सन्यासी आया क्या, तो उनको पता चला कि हाँ एक सन्यासी आया था, वो अचेतन हो गया जगन्नाथ को दर्शन करके, और सगुण भट्टाचार्य ने उनको अपने घर ले गया। तो उनके साथ सगुण भट्टाचार्य को शालक मतलब उनकी पत्नी के भाई का साथ उनका उन लोगों को साक्षात हुआ। उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य ने उनको देखकर बहुत ही हर्षित हुआ, बहुत आनंद हुआ। गोपीनाथ आचार्य जी भी जब नवद्वीप के थे, सागरों भट्टाचार्य भी नवद्वीप के थे, तो उन्होंने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी में आए हैं, तो गोपीनाथ आचार्य जो उनको लेकर गया सर्वम भट्टाचार्य के घर। चैतन्य महाप्रभु तब तक अचेतन थे, तो जब उन्होंने हरिनाम कीर्तन शुरू किया तो महाप्रभु का चेतना आ गया वापस। महाप्रभु ने तो सर्वम भट्टाचार्य ने कुछ अपना कंसर्न, उनका कुछ एंग्जाइटी, क्या बोलेंगे,
चिंता,
कुछ चिंता के बताया, ये इतना कम उम्र के हैं ये सन्यासी, इतना कम उम्र में सन्यास इतना कम उम्र में ये सन्यास ले लिया। ये देखने में इतना सुंदर है और ये इतना भावुक है, सो नाचते हैं गाते हैं, ये शायद सन्यास नहीं रख सकेंगे। और सन्यास लेकर गिरना बहुत ही खराब है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्य के कारण होता है। तो सर्वम भट्टाचार्य ने ये जो अपना जो चिंता प्रकाश करने लगा, तो गोपीनाथ आचार्य ने बोला किसके बारे में कह रहे हैं, ये तो भगवान है स्वयं। गोपीनाथ आचार्य ने बोला, सर्वम भट्टाचार्य ने बोला ये तुम्हारा सेंटिमेंटल एक्सप्रेशन है, तुम मन की कल्पना के द्वारा तुम ऐसे कह रहे हो, कलयुग में भगवान नहीं आते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने बोला हाँ कलयुग में भगवान नहीं आते, लेकिन कलयुग में भगवान अपने परिचय गोपन करके आते हैं, भगवान के रूप में नहीं आते हैं। कलयुग में भगवान भक्तों के रूप में आए हैं, अपना परिचय गोपन रख के। तो ये कहते हुए ऐसे गोपीनाथ आचार्य के साथ सगुण भट्टाचार्य का तर्क होने लगा। गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि भगवान की कृपा से ही भगवान को लोग पहचान सकते हैं, भगवान का कृपा पर नहीं हुआ इसलिए आप पहचान नहीं सक रहे हैं। सर्वम भट्टाचार्य का मनोभाव ये था कि ये इतना कम उम्र में सन्यास लिया है, ये देखने में इतना सुंदर है और इतने भावुक है, इसके लिए सन्यास रखना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं उसको वेदांत सिखाऊंगा, वेदांत सिखाकर हम उसको सन्यास आश्रम में सही रूप में स्थापित करूंगा। तो गोपीनाथ आचार्य ने ऐसे बोलने लगा आप क्या किसके बारे में क्या कर रहे हैं। तब जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि सर्वम भट्टाचार्य ने उनको वेदांत सिखाने का तय किए हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हाँ ये मेरे शुभाकांक्षी हैं, मेरा भला चाहते हैं, आप अगर हमको शिक्षा देना चाहते कोई तो मेरा स्वभाव है, मैं जरूर आपसे शिक्षा लूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सिखाने लगा। सार्वभौम भट्टाचार्य का वेदांत पर जो व्याख्यान है वो था निर्विशेष बात की दर्शन, शंकराचार्य का जो निर्विशेष दर्शन है उसके आधार पर। निर्विशेष और सविशेष बाद का विषय में आप सबको जानकारी है, किसको कौन जानते हैं निर्विशेष बाद और सविशेष बाद क्या है? अच्छा, कौन कौन नहीं जानते हैं? ओके, कौन कौन जानना चाहते हैं? ओके, निर्विशेष बात का मतलब होता है जो नहीं मानते हैं कि भगवान का रूप है, भगवान का गुण है, भगवान का शक्ति है, मतलब सरल रूप से वो मानते हैं कि भगवान निराकार है। और सविशेष बात का मतलब है भगवान साकार है। भगवान पुरुष है, परम पुरुष, भगवान शक्तिमान है, भगवान की विशेषता है, भगवान की लीलाएं है। निर्विशेषवादी जो है वो मानते हैं कि ब्रह्म ही, ब्रह्म ज्योति ही परम है, और ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही अंतिम उद्देश्य है। लेकिन सविशेषवादी जो है उनको विचार है कि ब्रह्म ज्योति ही अंत नहीं है, ब्रह्म ज्योति के परे है परम ब्रह्म जो है परम पुरुष श्री कृष्ण, और उनकी अंग से जो ज्योति निकलता है वही है ब्रह्म ज्योति। तो सरल रूप से ये है निर्विशेषवाद और सविशेषवाद में अंतर। आप समझ गए हैं? कौन कौन समझे हैं? थैंक यू सो मच। सार्वभौम भट्टाचार्य का विचार था निर्विशेषवाद का विचार। तो निर्विशेषवाद के आधार पर व्याख्यान सुनाने लगा। ये वेदांत दर्शन का 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुनाने लगे और चैतन्य महाप्रभु भी बैठकर सुनने लगा। हाँ ना कुछ नहीं बोला, कुछ पूछा भी नहीं। तो 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचने लगा, मैं जो समझा रहा हूं कि समझ रहा है? तो पूछा, कृष्ण चैतन्य मैं जो बता रहा हूं तुम सहज समझ रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वेदांत का जो सूत्र है वो मैं समझ रहा हूं, बल्कि उसका भाष्य जो आप बता रहे हैं, मतलब उसका व्याख्यान जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, सूत्र को विश्लेषण करने के लिए उसका व्याख्यान या भाष्य, तुम बोल रहे सूत्र समझ रहे हो भाष्य नहीं समझ रहे हो, कैसी बात है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपका जो भाष्य है वो सूत्र को व्याख्यान नहीं कर रहा है, वो सूत्र को आच्छादन कर रहा है।
तो ऐसे जब बताया तो चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य ने बहुत बहुत नाराज हो गए, तुम क्या कह रहे हो, मेरा व्याख्यान सूत्र को आच्छादन कर रहा है। तो वैसे दोनों में तो चैतन्य महाप्रभु ने तब बताया, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आया, एक श्लोक आता है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। तो ये श्लोक का व्याख्यान आप कीजिए। सर्वम भट्टाचार्य ने बहुत रूप से उसका व्याख्यान दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब उसका व्याख्यान शुरू किया इस श्लोक का। 64 व्याख्यान उसको किया करके सुनाया। सर्वम भट्टाचार्य 18 व्याख्यान दिया, चौथा चैतन्य महाप्रभु 18 को स्पर्श न करके 64 व्याख्यान दिया। और उनका व्याख्यान की ये मतलब था, ये श्लोक का अर्थ ये है, आत्मा रामश्च मुनयो, ये जो निर्विशेषवाद जो है उनका कहना है कि ब्रह्म में लीन होना ही अंतिम उद्देश्य है, जो मुक्ति, मुक्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य है। बल्कि इस श्लोक में वर्णन हो रहा है आत्मा राम, मतलब जो आत्मा में आनंद आस्वादन करते हैं, जो मुक्त पुरुष, जो व्यक्ति मुक्त होकर आत्मा में आनंद आस्वादन करते हैं, जो मुनिगण, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि, निर्ग्रंथ सारे ग्रंथी या बंधन से मुक्त हो गए हैं, होते हुए भी सारे भौतिक बंधन से मुक्त होकर आत्मा में आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होकर आनंद आस्वादन करते हैं, वैसे मुक्त पुरुष भी निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे परमेश्वर भगवान के प्रति कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति करते हैं। मतलब मुक्ति के परे, अर्थात जो व्यक्ति मुक्त हो गए हैं वो व्यक्ति भी भगवान के प्रति भक्ति करते हैं। तो ऐसी ही मुक्ति के परे भक्ति का स्थिति है। ऐसे सर्वम भट्टाचार्य ये एक 24 साल की उम्र के एक सन्यासी के पास पराजित हो गया। सर्वम भट्टाचार्य तब अपना घर में जाकर दरवाजा बंद करके बहुत ही विमर्श होकर रोने लगे। तब गहरा रात पर अचानक सर्वों ने देखा कि उनके सामने एक पुरुष खड़े हुए हैं, जिनके दो हाथ में रामचंद्र के धनुष बाण और दो हाथ में श्री कृष्णचंद्र के मुरली और दो हाथ में सन्यासी के दंड और कमंडलू। मतलब उनको दर्शन हुआ कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं श्री कृष्णचंद्र और श्री रामचंद्र, ये सजभुज रूप का दर्शन उनको हुआ। और तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर सर्वम भट्टाचार्य उनको वंदना शुरू किया।
उस वंदना का पहला श्लोक ये था, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि चस्तमः प्रपद्ये। वैराग्य विद्या त्याग की चरम शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है, जो वैराग्य विद्या जो है, निज भक्ति योगम, अपना भक्ति योग, भगवान का भक्ति योग, ये अपना भक्ति योग रूपी जो वैराग्य विद्या है उसको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए हैं। ऐसे जो सार्वभौम भट्टाचार्य पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करने में इनकार कर दिया था, श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त बन गए। बहुत सारे लीलाएं हैं श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे सुंदर लीलाएं वर्णन हुआ है। हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमको ये कृष्ण प्रेम रूप भक्ति मिला है, ब्रज प्रेम जो बहुत ही दुर्लभ था। यदि गौर ना हुई तो तौबे की हुई तो, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ना आते तो कैसे हम ये ब्रज भक्ति के बारे में हमारा जानकारी होता था। ये वृंदावन की जो भक्ति है उसको समझना बहुत ही कठिन है। वैष्णवगण भी सोचते हैं कृष्ण का वृंदावन लीला अशालीन है, ब्रज गोपिया के साथ कृष्ण का जो लीला है वो ठीक नहीं है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के माध्यम हमें पता चलता है इसका महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्णा, तो बहुत संक्षेप में गुरु महाराज ने बताया हमको चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं श्री कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए भाव में आए हैं, बातचीत में उनसे पूछा इसके बारे में क्या भागवत में बताया गया या नहीं बताया गया। भागवत में तीन लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थ्री लेक्शन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु भागवतम जो भी जानना चाहते हैं आगे भागवत में लिख सकते हैं और भी शास्त्र में दर्शन आए हैं। लेकिन अभी जैसे महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु पुष्पों से भक्ति सिखाने के आए हैं भगवान के भाग में, और ये जो आंदोलन सबसे सफल हुआ है इस्कॉन का, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी जो सार्थक करके हरिनाम को सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया है कथन में। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे भक्ति का प्रचार करने का हमको अवसर मिल रहा है। तो तो देखिए अभी महाराज को लगभग 5-6 दिन से 7 दिन बुखार चल रहा था, जब ट्रेवल करके उज्जैन गया तभी बुखार था, कभी बुखार था, इसके प्रॉब्लम थी, हमने यहाँ पे कृपा करने के लिए आए हैं, घर खराब है, इतना कफ हो रहा है, इतना बुखार है, शिकार भी और शरीर स्वस्थ नहीं है, पर महाराज ने जो इतना अच्छी प्रकार का साथ जो एसोसिएशन दिया है हम उसके बहुत बहुत आभार हैं। भजन सबसे सुंदर स्वर सबसे सुंदर कहते हैं गला खराब होने के कारण से विश्वास नहीं सुंदर आदमी को तो आशा करते इसकी बात करनी है। अच्छा एक अनाउंसमेंट है, ये कुछ महाराज के बारे में उन्होंने उद्घाटित किए हैं, एक भाई के उद्घाटित किए हैं एक अनाउंसमेंट है, देखिए इसी पर भागवतम का आवेदन कर रहे हम लोग तो हमारे पास कुछ सेट से रेडी है, मुझे एक सेट बोला कविता जी ने बोला हमारे पास 3 सेट और रेडी है, जिनके पास भागवतम का सेट नहीं हो स्कॉन का आप लीजिए, एक महेश 3 सेट और जो है 2 सेट और इसी उसमें भागवतम के लिए अच्छा एक आप करना आप सुनना गोपाल जी गोपाल जी और भी कुछ ये सेट भागवतम सेट हिंदी में या इंग्लिश में ये सेट अच्छा भी मात्र रहेगी में चार तो आपको अभी भागवतम सेट ले लीजिएगा और अभी सब लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे ना प्रसाद कोई नहीं है उनका कल भरूच में है नए बंदे जो भागवतम कार्यक्रम है तो यहाँ से 6 बजे के आसपास बस जाएगी जो लोग जाना चाहते हैं अभी किशोर कृष्ण नाम लिखा है श्रीकांत लोगों को लिखा है नाम सुनील कृष्ण लोग स्नातक लोगों को लिखा है अपने नाम लिखा दिए कहाँ से बस कैसे जाने वाली है जो बैठा लोग कह देंगे 2 बजे के वहां से तो शाम को आपको अटेंड कर सकते जा सकते जाना चाहते हैं भूमि पूजन हो आज आज के प्रसाद की सेवा बड़े उत्साह से अमृतसर से आए प्रमोद तो प्रोदन प्रभु गौरव और विशाल जी पिताजी उन्होंने विशेष करके हमसे कहा कि आज प्रसाद की सेवा देना चाहते थे उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं तो हरि हो बोल के हरि हो हरि हो हरि हो बहुत ही उत्साह मतलब उन्होंने बड़े उत्साह से भक्ति ग्रहण किए और मैं भी कहूंगा हम सुबह बाद का प्रेम थोड़ा है जरूर जिन प्रभु ने तो अकेले महाराज को हमारे साथ खुश ले जाते हैं और इतना सुंदर स्वागत इतनी सुंदर व्यवस्था हमें आपसे अंदर आने का
हरे कृष्णा दिवाय जिनसे भी मिलते हो उन्हें याद रह जाते हो कितनी आत्मीयता से गले लगाते हो मिलकर आपसे लगता है मानो ये नाता जन्मों का है सबसे प्रेम निभाते हो इतना प्रेम कहाँ से लाते हो गाते हो आप तो शहद कानों में खुल जाती भूले मुंह को भी मानो राह मिल जाती ध्वनि मानो गोलोक से आ रही है और 14 लोकों में गुंजायमान हो रही है सबको मधुरता का बोध कराते हो इतना प्रेम कहाँ से लाते हो घर में आए तो घर मंदिर बना देते हो आप कितना अच्छा प्रसाद बनाते हो मुस्कुराकर देखते हो तो हृदय व आत्मा को प्रफुल्लित कर जाते हो सबको अमृत पान कराते हो इतना प्रेम कहाँ से लाते हो वेदों की वाणी को सार्थक बनाते हो अपने आचरण से सबको सिखाते हो, पूरे विश्व को अपनी चरण रथ से पावन बनाते हो, प्रभुपाद के मनोभाव सबको समझाते हो, इतना प्रेम कहाँ से लाते हो। बच्चों के संग आप बच्चे बन जाते हो, युवाओं को आप युवा ही नजर आते हो, दोस्तों के दोस्त तो आप हैं ही, दुश्मनों को भी आप दोस्तों से भाते हो, सबकी सुनकर सबके मन को संतुष्ट कर जाते हो, इतना प्रेम कहाँ से लाते हो। जीवन की कश्ती के आप कप्तान हो, प्रेम की प्रतिमूर्ति प्रेम का प्रकाश हो, हम कितने खुश नसीब हैं आप हमारे साथ हो, प्रभुपाद की मधुरता का एहसास कराते हो, अंधियारे जीवन को रोशन कर जाते हो, इतना प्रेम कहाँ से लाते हो। गुरु भाई आपको स्नेह से देखते हैं, प्रभुपाद के आंदोलन के रखवाले हो, अपने मन अपने पद का मान तो सब रखते हैं, आप दूसरों के पद की भी मान को भराते हो, गुरु भाइयों में प्रेम की मिसाल हो, सम्मान और शिष्टाचार की पहचान हो, प्रभुपाद के स्नेह पात्र हमारे आदर्श हो, हमें भी परंपरा से जोड़ते चले जाते हो, इतना प्रेम कहाँ से लाते हो। तूफानों से भरे मेरे जीवन सागर में मैं डूब रही थी, दुखों भरे जीवन में न मार्ग सूझता था न दर्द कम होता दिखता था, एक जादूगर की तरह आप जीवन में आए, अपनी छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल दिया, मुझे उनकी प्रिया और उनको मेरा आनंद बना दिया, आप कैसे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर जाते हो, इतना प्रेम कहाँ से लाते हो, इतना प्रेम कहाँ से लाते हो। यूजुअली शिष्यों का फर्ज होता है कि गुरु को प्लीज करें, ये उनके जीवन का ध्येय होता है, बट आई ऑलवेज सी कि आप हमें खुश करने के लिए आप हमारी सेवा करते हैं, हम जो बनाते हैं आप खाते हैं, और आज पंडित ने बोला था यू आर सच अ बिग लायर, आपकी जो प्रेम कितना अच्छा बना था, कितना अच्छा था सब कुछ, मुझे लगता था हम आपको प्लीज नहीं करते, आप हमें प्लीज करते हैं, आप हमें खुश करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सच में सीखें आपको प्रसन्न करना।
I was thinking of saying something, but I became speechless. Only thing maybe I can say, मैं तो केवल आपके प्यार के आभारी हूँ।
जब उसको ज्वाइन किया और प्रॉपर तुरंत ही अपना पर्सनल सेक्रेटरी पर्सनल को और जब ज्वाइन करने के बाद और जब तो पानी छोड़ के भी गए घर को और उन्होंने पहचाना जिसे इन्वॉल्व कहते भी है इन्वॉल्व डिवोटी और हम देखते हैं महाराज के जीवन में जिस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रभुपाद से भेंट होने के पहले ही सिर्फ उनके शिष्यों के संपर्क में आके किस प्रकार जीवन समर्पण किया, उन्होंने इतना हमको संग मिलता है, इतनी साधना करते हैं, इतना अध्ययन करते ग्रंथों का फिर भी समर्पण नहीं कर पाते, तो प्रभुपाद के प्रति संगी है महाराज, और इस प्रकार हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का आपका समर्पण शरणागति निष्ठा दृढ़ता सहन शक्ति क्षमाशीलता करुणा इत्यादि गुण है, तो हम लोग उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे इनके इसके अलावा भी और उद्देश्य में काफी बात है।
थैंक यू सो मच राधा चरण प्रभु। हरे कृष्ण Okay, Hare Krishna, so we can, I mean that was a very sweet ending from Janavi Priya. I probably couldn't give the response properly in Hindi, as you are saying, like all I can say is, you are asking, where do I get all this love? And I'll simply say that I'm simply trying to reflect the love that I am receiving from you all.
Thank you.